ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನನ್ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ
ಜಯ ಜಯ ರಾಧಾವಲ್ಲಭ
ಸರ್ವಸ್ವ ನಿಭೃತ್ ನಿಕುಂಜ ವಿಲಾಸಿ ಲಾಡಲೆ ಶ್ರೀ ರಾಧಾವಲ್ಲಭ ಲಾಲ್ ಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಯುಗಲ್ ಚರಣಾರವಿಂದ ಮಾಧುರಿ ಕಾ ಧ್ಯಾನ್ ಕರ್ತೆ ಹುವೆ ಸರ್ವಾದ್ಯ ರಸಿಕ ಜನ ವಂದಿತ ಚರಣ ರಸಿಕಾಚಾರ್ಯ ಶಿರೋಮಣಿ ವಂಶೀವತಾರ್ ಶ್ರೀಮನ್ ಶ್ರೀ ಹಿತ ಹರಿವಂಶ್ಚಂದ್ರ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಕಾ ಧ್ಯಾನ್ ಕರ್ತೆ ಹುವೆ भाव से श्री वृंदावन धाम की रज को अपने मस्तक पर धारण करते हुए आप सबके हृदय में बैठे प्रेम प्रभु को प्रणाम। आज इस पूर्ण आहुति के सत्र में हम लोग प्रवेश करें, आइए कुछ क्षणों के लिए प्रेम से भाव से मेरे संग भगवान नाम का आश्रय लीजिए। उसके बाद जैसा श्री किशोरी जी कृपा करें हम लोग भाव में प्रवेश करें।
हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो जीवन धन राधा 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 राधा
जीवन धन राधा 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 राधा
किशोरी राधे
श्री राधा वल्लभलाल की श्री हितरिवंश चंद्र महाप्रभु की जय श्री वृंदावन धाम की श्री यमुना रसरानी की श्री वृंदावन रजरानी की समस्त संत भक्तन की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जिस प्रेम की महिमा का कथन और श्रवण हम लोग पिछले दो दिनों से कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा कहने का प्रयास मात्र कर रहा हूँ, आप श्रवण कर रहे हैं। और सबसे पहले तो मुझे ये कहना है कि दिल्ली वाले बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आप लोगों ने बड़े प्रेम से सुना, मुझे अच्छा लगा यहाँ पर आपके बीच में ये चर्चा करके। तो जिस प्रेम की, जिस भाव की, जिससे जीवन में वस्तु की प्राप्ति हो सकती है, देखिए साधन का आरंभ किसी ने कहीं से भी किया हो, क्योंकि जीव जब जन्म लेता है तो अच्छे और बुरे दोनों ही कर्म लेकर आता है संसार में, और कहीं ना कहीं परमात्मा के प्रति, उस परम सत्ता के प्रति, उस महामहिम के प्रति चित्त में एक आकर्षण, चित्त में एक झुकाव सबके हृदय में होता है। इस धरती पर कोई नास्तिक है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। भेद केवल इतना होता है कि कोई अपना साधन कहीं से आरंभ करता है तो कोई कहीं से आरंभ करता है। लेकिन आप सब लोगों ने जैसे सुना होगा कि रास्ते अलग अलग हो सकते हैं लेकिन जाना तो एक ही जगह पर है, उसका अर्थ यही है कि आप कहीं से भी आरंभ करें लेकिन अंततः एक ना एक दिन आपको प्रेम की कक्षा में आना पड़ेगा, आपको प्रेम करना सीखना पड़ेगा। क्योंकि जिस दिन आप प्रेम के योग्य हो, मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, बहुत अच्छा साधन भी करते हैं, सज्जन भी हैं, बराबर तीर्थ का भी सेवन करते हैं, धाम का भी सेवन करते हैं, पर उसके बाद भी एक संशय कि पता नहीं जो हम कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं, पता नहीं हम ठीक दिशा में जा रहे हैं या नहीं। तो संशय करना ऐसा है जैसे कोई किसान बीज बो दे और फिर रोज मिट्टी हटाकर उस बीज को देखे कि ये फलीभूत हुआ या नहीं। समय, आप समय दीजिए अपने आप को। प्रार्थना और पुरुषार्थ ये तो हम लोग करते हैं, प्रतीक्षा नहीं करते हम लोग। प्रीति और प्रतीति, ध्यान देना, प्रीति और प्रतीति ये दोनों जब मिलते हैं तो वस्तु की प्राप्ति होती है, तो अनुभव होता है। प्रीति प्रभु चरणों से और प्रतीति, प्रतीति का अर्थ आपको ये पता होना चाहिए कि जिसका नाम आप ले रहे हो वो कौन है। क्योंकि अभी तक जब तक आपका सर किसी और दर पे झुकता है तब तक आपको मालूम ही नहीं है कि आप हो कौन, आप किसके हो, कहां से आए हो, आपको कहां जाना है। जिस दिन जीव को ये मालूम हो जाता है, जो श्रीमद् भागवत जी घोषणा करती है, जीव श्री कृष्णस्य नित्य दास, जिस दिन जीव को यह मालूम पड़ जाता है कि मैं कौन हूं, कि मैं तो ठाकुर जी का हूं और कहां जाना है, अंततः उन्हीं के चरणों में जाना है, उस दिन वो केवल उनका हो जाता है। तो इस तीन दिवसीय यज्ञ में जितना प्रभु ने हम पर कृपा किया, हमको यहां उनका नाम लेने का, उनके भक्तों की कथा अमृत पान करने का सु अवसर मिला, इतना जरूर चाहूंगा कि यहां से कम आप ये प्रसाद तो जरूर लेके जावें, ये प्रसाद तो आप जरूर यहां से ग्रहण करके जाएं, कि इसके बाद हर व्यक्ति यहां से जाने के बाद ये चिंतन जरूर करे कि आप ठाकुर जी के हैं, आप श्री कृष्ण के हैं। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि हम उस पथ के अनुयायी हैं, ये मेरा कोई पक्षपात नहीं है, क्योंकि व्यासपीठ एक ऐसा स्थान है जहां पे आप निष्पक्ष बात कह सकते हैं। मेरे बहुत ऐसे ऐसे लोगों से मैं मिला हूं जिनको समाधि तक के अनुभव हुए हैं। अगर ज्ञान का मार्ग भक्ति के मार्ग से श्रेष्ठ होता तो सुखदेव जी जैसे ब्रह्म ज्ञानी जिनको वस्तु के अलावा और कुछ भासता ही नहीं था और कुछ दिखता ही नहीं था, वो सुखदेव जी जैसे ब्रह्म ज्ञानी उनके कानों में जब श्रीमद् भागवत जी का श्लोक पढ़ा, बरहा पीडम नटवर वपहु कर्णयो कर्णिकारः, श्री ठाकुर जी के रूप का, ठाकुर जी के लावण्य का केवल एक पद, एक आभास मात्र उनके कानों में पड़ा और सब कुछ भूल गए, रसिक हो गए। कल मेरे से किसी ने कथा के बाद प्रश्न पूछा कि विरक्त और रसिक में क्या फर्क है, क्या भेद है, तो ऐसा समझ लो कि विरक्ति पहली कक्षा है और रसिकता अंतिम कक्षा है। ऐसा नहीं है विरक्ति बेकार की चीज है, संसार से जिसको संसार फीका लगेगा उसी को तो प्रभु मीठे लगेंगे, या ऐसा कह लो जिसको वो मीठे लगेंगे उसी को संसार फीका लगेगा। साधन से कृपा और कृपा से साधन, ये प्राप्ति का मार्ग है। जब ये कह दिया जाता है कि वो कृपा साधने हैं, साधन साध्य नहीं है, तो जब साधन साध्य है नहीं तो हम अपना बल, हम अपना श्रम साधन करने में क्यों खर्च करें, क्यों ना हम कृपा की याचना करें। तो आश्रित हो जाइए। मैंने कहा ना कि साधन से बल से कोई नहीं प्राप्त कर पाएगा कभी भी, और आशा प्रभु किसी की तोड़ते नहीं, आशा भगवान सबकी पूरी करते हैं। फिर से अपनी बात दोहराऊंगा, मैंने निवेदन किया था और इस बात को हो सके आज आप यहां से ले जाना व्यासपीठ का प्रसाद समझकर कि जिन्ना सिदक तेरे ते रखा है उन्ना सब कुछ पाया है, ते ओ मलदे रह गए ने तलियां जिन्ना नु सिदक ना आया है। बस आप भरोसा सीख जाइए, विश्वास सीख जाइए कि आप प्रभु के हैं, आपको उनका होना नहीं है, आप उनके हैं, केवल आपको मानना है। एक कन्या विवाह के बाद जब ससुराल में आती है तो ये मेरी सास है, ये मेरा ससुर है, ये देवर है, ये पति है, ये मन ही तो मानता है और क्या होता है, बाहरी किसी परिस्थिति में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, और वो अपना पूरा का पूरा जीवन बिताने एक विश्वास पे ही तो आती है कि अब ये मेरा पति है, अब ये मेरा सब कुछ है, एक मन मानता ही तो है और क्या होता है। बस इसी तरीके से आपके मन को मनाना है, आपने अपने मन को ये बार बार कहना है कि प्रभु तेरे हैं। वैसे तो खेद की बात है, जो संसार आपको मालूम है आपका नहीं है, आपका अपना शरीर आपका नहीं है, आपका अधिकार है अपने शरीर पे बिल्कुल भी नहीं, अगर हो तो कोई क्यों बूढ़ा हो, कोई क्यों बीमार पड़े, हम नहीं चाहते कि हम बूढ़े हों, हम होते हैं, हम नहीं चाहते हम बीमार पड़े, हम पड़ते हैं क्योंकि हमारा अधिकार नहीं है। यदि कभी चिंतन करोगे तो पाओगे कि अधिकार क्या है आपका, आप प्रभु से प्रार्थना कर सकते हो, यह आपका अधिकार है और यही आपके अधिकार क्षेत्र की बात है बस। इसलिए सत्संग के बाद जीवन में ये परिवर्तन आए कि आप चित्त को बार 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 समझाएं, सिखाएं कि प्रभु आपके हैं। आप देखना ये कितना बड़ा मंत्र है, आप इसको अपना के देखिए, खाली मेरी बात सुन के खुश मत हो जाना। और मैं तो बड़े खुले शब्दों में कहूंगा कि मेरी ये बात या मैं और कुछ जितना भी यहां से कह रहा हूं, जितना भी सेवा मैं कर रहा हूं, कोई भी खाली सुन के खुश मत हो जाए, आप अपना के देखिए, आपको परिवर्तन मिलेगा, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, आपके जीवन में आनंद आएगा।
क्षमा करना, मैं किसी मार्ग की निंदा नहीं कर रहा हूँ। मैंने देखा है ऐसे ऐसे संत जिनके जिनको समाधि तक की अवस्था का भान हुआ है, जिनको समाधि तक प्राप्त हुई है, और आप चेहरा देखेंगे ना ऐसे जैसे 12 बजी हुई हो, मुस्कुराहट तक नहीं है चेहरे पे। अरे आपने बहुत अच्छा सा परफ्यूम लगाया हो, तो आप किसी को खुशबू देते थोड़ी है, या वो आपसे मांगता थोड़ी है, खुशबू स्वतः आ जाती है। तो जिनकी नजरों में मोहन समाए वो नजर फिर तरसती नहीं है। तो पहला पाठ कि सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण चरणारविंद की प्राप्ति है। सारन को सार और रस को भी रस यही है कि राधा पद पंकज के भ्रमर हो रही है, ये सर्वोत्तम है। बाकी कुछ होगा, लेकिन देखो सर्वोच्च होने के साथ साथ कोई सर्वोत्तम भी हो ये कोई जरूरी नहीं है। कोई आज बहुत ऊंचे सिंहासन पे बैठा है, कोई आज बहुत ऊंचे पद पे बैठा है, वो बहुत उत्तम व्यक्ति हो ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए और जितने भी मार्ग हैं सब में सत्ता प्रभु की है, लेकिन वो सर्वोच्च होने के साथ साथ सर्वोत्तम भी हो कोई जरूरी नहीं है। एक श्री कृष्ण की प्राप्ति, आपकी अपनी अपने स्वरूप की प्राप्ति, ये वो मार्ग है जो सर्वोत्तम भी है, सर्वोच्च भी है, सर्वोत्कृष्ट भी है, सरस भी है, सरल भी है, सत्य भी है। और आज जिनकी कथा मुझे कहनी है, और अधिक कुछ ना कहते हुए मैं कथा में प्रवेश करना चाहूँगा, जिनकी कथा मुझे कहने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और निश्चित रूप से आपको सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, उन प्रेम अवतार जिस प्रेम के वश में भगवान रहते हैं, आप सबने सुना होगा लव इज गॉड। और मैं शत प्रतिशत ये बात मानता हूं कि अगर कोई भगवान है तो वो प्रेम है। तो जिनकी कथा मुझे कहनी है, ठाकुर जी की वंशी का अवतार, सर्वाद्य रसिक जन वंदित चरण, रस रसिकन आधार, वंशी अवतार सर्वाद्य रसिक जन वंदित चरण, रसिकाचार्य शिरोमणि श्रीमन हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु। आप सब श्रीधाम गए हैं या जाते रहते हैं, आपने श्री राधा वल्लभ लाल का दर्शन भी सबने पाया होगा। जिनकी वजह से, जिनकी बदौलत, जिनके कर्म से, जिनकी कृपा से आज हम सब इस रस को बिलस रहे हैं, भक्ति रस, प्रेम रस, क्योंकि वेद जिसको रस कहकर चुप हो जाते हैं और कुछ नहीं बता पाते। संसार में तो सर्वोपरि वेदवाणी है और वेद की श्रुति कहती है रसो वैसा, कि वो रस है बस इतना बता पाती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन वो रस कैसा है, कहाँ प्राप्त होता है, उसका स्वाद कैसा है, उस रस को जिसको वेद नेति नेति कहकर चुप हो जाते हैं, बता नहीं पाते कि वो क्या है। ठाकुर जी भी रस नहीं है, श्री कृष्ण रस नहीं है। श्रीमद् भागवत का महात्म्य कहता है योत फलम च नंद नंदन, श्रीमद् भागवत सर्वोपरि है और श्रीमद् भागवत कहती है कि सब चीजों का जो फल है वो ठाकुर जी के चरणों की प्राप्ति है। जब गोपिकाएं, ठाकुर जी ने मुरली नाद किया और गोपिका महाराष्ट्र में प्रवेश करने के लिए, महाराष्ट्र का आनंद लेने के लिए सब कुछ छोड़कर, घर बार छोड़कर ठाकुर जी के पास पहुंची, तो ठाकुर जी ने एक बार परीक्षा लेनी चाहिए कि देखो तुम इस समय रात्रि निर्जन वन में, मैं पर पुरुष हूं और तुम मेरे पास आई हो, तो ये शास्त्र की दृष्टि से तो उचित नहीं है। तुम अपने पतियों को छोड़ आई हो, बच्चों को छोड़ के आई हो, तो तुम वापस जाओ। तो गोपिकाएं चतुर निकली और क्या उत्तर देती है कि महाराज सारे जितने भी कर्म हैं, पति की सेवा, घर गृहस्थी का जो भी सेवा आपको मिला है, उन सबका फल तो आप है ना, जब आप सामने बैठे हैं तो फिर पीछे देखने की क्या आवश्यकता है। तो श्रीमद् भागवत कहती है योत फलम च नंद नंदन, ठाकुर जी फल है। अब भाई फल में तो छिलका भी होता है, गुठली भी होती है, ऐसे ठाकुर जी में गड़बड़ी भी है, बदमाशी भी है। जब रस की बात हुई तो सबसे पहला रस आया शांत रस, जो लोग समाधि का आनंद लेते हैं, शून्य में चले जाते हैं, उनके लिए ना कुछ अच्छा ना कुछ बुरा, उसको हम सबसे पहली कक्षा मानते हैं। फिर उसके बाद जो रस आता है वो है सख्य रस, क्षमा करना दास्य रस, जिसका आस्वादन हनुमान जी करते हैं, हनुमान जी, तुलसीदास जी, ये दास्य रस के आचार्य हैं। लेकिन अब दास जो है वो स्वामी के साथ हमेशा तो नहीं रह सकता, उसको स्वामी को छोड़ के जाना पड़ेगा, और स्वामी जब चाहेगा दास को बुलाएगा और जब चाहेगा कहेगा जाओ, तो उसको जाना होगा। तो रसिकों को आनंद नहीं आया इस रस में भी, बोले कुछ और आगे चलना चाहिए। तो और आगे निकला सख्य रस, जैसे सुबल, श्रीदामा, मधुमंगल, सुदामा, इन्होंने ठाकुर के सख्य रस का आनंद लिया। ठाकुर के संग दिन से शाम तक खेलते हैं, कूदते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन उनको भी अलग होके जाना पड़ता है। रात्रि होती है तो यशोदा मैया कहती है आप सब घर जाओ, सुबह आना। तो रस में विरस तो उनके रस में भी हुआ, तो रसिकों ने कहा ये भी नहीं, क्योंकि रस का जो लक्षण वेद बताता है वो ये है कि प्रतिक्षण वर्धमानम। श्री नारद जी भक्ति सूत्र में जिसका वर्णन करते हैं वो कहते हैं कि प्रतिक्षण वर्धमानम, जो आज आपको प्राप्त हो गया फिर कहीं जाए नहीं, पल 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 बढ़े। आप बताओ संसार में कोई वस्तु ऐसी है जो आपको आज आनंद दे रही है और सदा देती रहेगी? कोई भी नहीं। स्वयं संसारी नहीं है, आप ही नहीं हो। तो रसिकों ने कहा ये भी कसौटी पे खरा नहीं उतरता, और आगे चलो। तो उससे आगे का जो रस आया जिसमें ठाकुर जी से और समीपता हुई वो है वात्सल्य रस, जिसका आनंद नंद बाबा, यशोदा मैया, ये सब लोग इन्होंने लिया। लेकिन ठाकुर जी बदमाशी से बाज नहीं आते, वहां भी दिखाई, कहां तो यशोदा मैया स्तन पान करा रही है ठाकुर जी को और महावात्सल्य रस, परम रस का आस्वादन कर रही है, और ठाकुर जी को जाने क्या सूझी। वो क्या है ना, वो अपनी भगवत्ता छोड़ नहीं सकते, उनको याद आ जाती है कभी कभी कि मैं भगवान भी हूँ, गोद में लेटे हैं तो आनंद से दूध तो पी रहे हैं, एक मिनट में याद आ जाएगी मैं भगवान भी हूँ। तो वो भगवत्ता दिखाई, मुख खोला और ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया, यशोदा मैया पानी पानी हो गई। तो कहाँ वो इतना बड़ा जो रस ले रही थी वो सब गया, घबरा गई। फिर ठाकुर जी ने फिर संभाला। तो रसिकों ने कहा इसमें भी किरकिरी है, और छानो इस रस को अभी। फिर आया मधुर रस, जिसका आस्वादन गोपियों ने किया। महाराज ने श्री ठाकुर जी के अधरामृत का पान किया और परम रस की प्राप्ति की। और श्रीमद् भागवत जी तो कहती है गोपियां प्रेमस्य पताका, प्रेम की पताका हैं। ठाकुर जी कहती है गोपियां मेरी आत्मा है, मैं उनमें और वो मुझ में रहती हैं। लेकिन वहां भी थोड़ी गड़बड़ी हुई। जब महाराज हुआ तो ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए गोपियों का मान भंग करने के लिए, उसमें भी विरस आ गया। रसिकों ने कहा ना भैया, यहां भी ये अपने भगवान पने से बाज नहीं आता, भगवत्ता दिखा दी। तो रसिकों ने कहा कि इस रस में तो किरकिरी रहेगी रहेगी। अंतिम कोटि तक पहुंच गए ठाकुर जी के साथ कांता भाव, जो संबंध पति और पत्नी जैसा, ऐसा संबंध का आनंद गोपियों ने प्रभु के संग लिया, लेकिन उसमें भी किरकिरी हो गई। रसिकों ने कहा इसमें भी आनंद नहीं है, और छानो इसे और देखो। अब जब और छाना और देखा, जब उन्होंने कहा कि इस फल में से छिलका भी हटा दो, गुठली भी हटा दो, सिर्फ रस रस रहने दो, और वो रस क्या निकला, श्री राधा जी के चरण। और यहां से आरंभ हुआ श्री वृंदावन रस की उपासना। इसलिए सारन को सार और रस को भी रस, सारन को सार और रस को भी रस, राधा पद पंकज श्री किशोरी जी के चरण। और वृंदावन रस की शुरुआत कहां से की, क्योंकि जब तक भगवान बना रहेगा तब तक पूरा पूरा आनंद नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो इसको भगवान की कुर्सी से उतारो और नौकर बनाओ, प्रिया जी के चरणों की सेवा कराओ। तब तो रसखान जी ने कहा ना कि दौर दौर जब हार थक्यो, रसखान बतायो ना लोग लुगायन, और देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। देखो प्रधानमंत्री भी होगा ना, तो वो भी अपने शयन कक्ष में। आपने कोई ऐसी पिक्चर देखी है आज तक जिसमें हीरो रूठा और हीरोइन मना रही हो? ऐसा होता ही नहीं। श्रृंगार रस के मूल में यही बात है कि नायिका प्रधान होती है, और असल में भी यही है। अरे ब्रज के रसिकों ने तो जो वाणी जी में अपना अनुभव लिखा तो ये कहा कि जहां जहां राधा प्यारी धरत चरण पिए तहां तहां नैनन के पांवरे बनावे। जहां किशोरी जी चरण रखने लगती हैं वहां ठाकुर जी अपने मोर मुकुट से बुहारी करते हैं। और इस रस को जिसने जगत में लाकर प्रकट किया, जिनसे पहले श्री ठाकुर जी ही सब कुछ थे लेकिन कृपा हुई हम पर, कृपा हुई जीवों पर, और इसके मूल में श्रीमन हितरिवंश चंद्र महाप्रभु के इस धरा पर अवतरण के मूल में, यहाँ आने के मूल में जो बात है वो ये संत लोग बताते हैं, लिखते हैं कि रास मध्य ललिता अधिक प्रार्थना जुकीनी करते सुकुमारी प्यारी वंशी तब दीनी सोई कली प्रगट रूप वंशी वपुधार्यो कुंज भवन रास रवन त्रिभुवन विस्तार्यो। एक बार रास हो रहा था नित्य निकुंज में, जिस तरह यहाँ ब्रज में लीला हुई ना उस तरह ठाकुर जी के प्रिया जी के नित्य निकुंज महल में नित्य लीला होती है, सतत हो रही है, क्योंकि जैसे भगवान शाश्वत हैं ऐसे भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान का धाम, ये चारों चीजें सनातन हैं, भगवत स्वरूप हैं। तो लीला हो रही थी तो ललिता जी के मन में आया कि जगत में तो कोई इस रस का छींट भी नहीं पाया किसी ने आज तक, कोई जानता ही नहीं है। सब लोग ये जानते हैं कि ठाकुर जी परम हैं, ठाकुर जी सर्वोत्तम हैं, लेकिन ये क्यों परम हैं, ये क्यों सर्वोत्तम हैं, कि किसके प्रताप से ये सब कुछ है ये कोई नहीं जानता। तो रास मध्य ललिता अधिक प्रार्थना जुकीनी, ललिता जी ने श्री प्रिया जी के श्री चरणों में प्रार्थना की, ये जो लोग आगे पीछे हिलते हैं जानते हैं कितना बड़ा अपराध करते हैं। सबसे पहले तो व्यासपीठ का अनादर होता है, आप यहां कथा सुनने आए हो और कितने सारे लोगों का भाव भंग होता है।